मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 1 अप्रैल 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के लिए मैंने एक बहुत ही व्यावहारिक विषय का चुनाव किया है और यह विषय है कि आइए हम सब धर्म के सच्चे अर्थ को समझें। और सच पूछिए तो इस विषय का चुनाव भी मैंने कम बल्कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हमें दिखाई दे रही हैं उन्होंने किया है। तो परिस्थितियां क्या हैं, देखिए हिंदू परंपरा के अंतर्गत, भारतीय परंपरा के अंतर्गत अभी नवरात्र चल रहे हैं, देवी पूजन हो रहे, इसके बाद रामनवमी आएगी, पूरा देश इसमें मग्न है, श्रद्धा के साथ देवी की आराधना कर रहा है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ने जो चुनौती पेश की है उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं। ठीक है वो अपने ढंग से लॉकडाउन कर रहे हैं और जो दूसरे कदम उठा रहे हैं, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में आप देखिए ऐसे मंदिर जो हमारे सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, जो भारतीय श्रद्धा के केंद्र हैं, पूजा आराधना बंद कर दी गई है, वहां गैदरिंग नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं कि केवल मंदिरों के साथ ही हुआ है, आप देखिए कि गुरुद्वारे में लंगर बंद हो गए हैं, मस्जिदों में नमाज अदाएं नहीं की जा रही हैं, आपके जो चर्चेज हैं उनमें सामूहिक रूप से प्रार्थना सभाएं नहीं की जा रही हैं, दूसरे जो कथा और या जो भी कह लीजिए इस तरह की गतिविधियां होती थी उन सब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। और उससे भी बड़ी बात यह कि हम सब लोगों ने पूरे खुले मन से इसे स्वीकार भी किया है, स्वीकार किया। आप देखिए कि इसके विरोध में कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है, न तो जनता से आवाज उठ रही है और न हमारे जो धार्मिक गुरु हैं उनकी तरफ से कोई आवाज उठ रही है। यानी कि उन सब ने भी स्वीकार किया कि वास्तव में वर्तमान में जो धर्म है वो यही है कि किसी भी प्रकार से मनुष्य के जीवन की रक्षा की जाए। और ये जो कोरोना वायरस लगातार फैलता चला जा रहा है इसे रोका जाए। तो दोस्तों यहां आपको क्या धर्म का एक नया स्वरूप उभरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? और सच पूछिए तो धर्म यही है, धर्म जिसे धारण किया जा सके। और धारण किसे किया जा सकता है, जिसे हम धारण कर सकते हैं या जो हमें धारण करना चाहिए, किसे हमें धारण करना चाहिए, जो हमारे अपने जीवन की रक्षा करता हो और साथ ही साथ दूसरों के जीवन की भी रक्षा कर रहा हो। मित्रों सच पूछे तो जब भी मैं धर्म के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में अनायास ही मनु ने जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं वे उभर कर आ जाते हैं। और इसकी चर्चा मैं कई बार अपने लाइफ मैनेजमेंट में कर भी चुका हूं। उसमें जो सबसे पहला लक्षण है, जो मुझे सबसे ज्यादा अपील करता है दोस्तों, वह है धैर्य, पेशेंस। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जो अंग्रेजी का शब्द है पेशेंस और वो जो दूसरा इसी के समानांतर एक थोड़ा सा शब्द है पेशेंट, क्या उनमें कोई फर्क है या दोनों में कोई समानता है? फर्क तो बहुत है। पेशेंस का मतलब है आप धैर्यवान हैं, लेकिन जब आप पेशेंट हो जाते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। तो क्या जब हम धैर्य खो देते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं? दोस्तों ये हमें ऊपरी तौर पर तो समझ में नहीं आता है, लेकिन सच ये है कि जैसे ही हम धैर्य को खोते हैं हम बीमार ही हो जाते हैं, क्योंकि धैर्य को खोने का मतलब ही है अपने आंतरिक संतुलन को नष्ट कर देना, अपने आंतरिक संतुलन को भूल जाना। और जैसे ही किसी भी चीज का संतुलन समाप्त होता है उसमें विकार आ जाएगा। कफ पित्त वात आयुर्वेद के ये 3 तत्व हैं, इनमें अगर जरा सा भी आनुपातिक अंतर आता है तो शरीर बीमार हो जाता है। प्रकृति में जब तापमान में अंतर आता है तो आप देखिए आंधी तूफान कुछ भी आने लगते हैं। पृथ्वी के अंदर के तापमान में फर्क आता है तो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा या भूकंप आने लगेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जब आपके अंदर भी कुछ हलचल सी होती है, जब संतुलन बिगड़ता है तो कभी तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी आपको बहुत ज्यादा क्रोध आने लगता है, कभी आपको बेकार शरीर अलसाया हुआ और मन करने लगता है कि जाकर के चुपचाप सो जाओ, लेकिन जब आप उत्साह से भरे होते हैं तो आपको लगता है कि मैं इस पहाड़ को खोद डालूं, ऐसा होता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो संतुलन है, संतुलन को बनाए रखने का जो सूत्र है वह सूत्र ही है धैर्य। और मुझे लगता है कि अभी जो कोरोना वायरस ने हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती पेश की है, या यूं कह लीजिए कि इसका जो सबसे बड़ा इलाज हो सकता है, जो टीका जो निकल सकता है वो है धैर्य। हम सभी को अभी फिलहाल 21 दिनों के लिए अपने अपने घरों में कैद शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप ये कह लीजिए कि रहने की सलाह दी गई है, रहने की सलाह दी गई है, ना तो ये कैद है और ना ही ये कोई नजरबंदी है, बस ये कहा गया है कि चूंकि एक दूसरे के मिलने से इसके संक्रामक होने की ज्यादा आशंकाएं होती हैं तो हम मिलना बंद कर दें। सरकार ने केवल इतना ही किया है। अब ये बात अलग है कि उसके इस आदेश को या अनुरोध को हम कुछ इस तरीके से ले लें कि दिमाग पर हमने एकदम से दबाव बना रखा है कि अरे बाप रे, हमें तो जेल में डाल दिया गया है, हम कहीं बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से सोचेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमारे दिमाग में दबाव पैदा होगा, हमारे दिमाग में तनाव उत्पन्न होगा, और जैसे ये होगा हम अपना धैर्य खोने लगेंगे, हमारा संतुलन गड़बड़ होने लगेगा। लेकिन यदि आप इसके बारे में बहुत इत्मीनान से सोचें तो आप देखिए कि आपके अंदर धीरे 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 संतुलन आने लगेगा, और जैसे ही संतुलन आने लगेगा आप अंदर से शांति महसूस करने लगेंगे, आपका जो धैर्य है वह बढ़ने लगेगा, या यूं कह लीजिए कि अगर आप में धैर्य होगा तभी धीरे धीरे ये शांति फैलनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज सोच करके देखिए कि क्या है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो दिक्कतें हो रही होंगी, कभी सामान आपको लेने जाना है नहीं जा पा रहे हैं, घर में अगर कोई बीमार है तो उसके इलाज में दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार ने भी इसके लिए भी प्रशासन ने अपने ढंग से व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि बीमार का इलाज हो सके, घरों में दवाइयां पहुंच सके, खाने पीने का सामान आ सके, सब्जियां मिल सके, दूध मिल सके, इस तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत डेफिनेटली होगी, लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि कोरोना वायरस ने जो हमारे सामने जिंदगी की चुनौती पैदा की है उसका मुकाबला करने के लिए अगर हम सब मिल करके कुछ दिनों के लिए इस दिक्कत को उठा लें, बर्दाश्त कर लें, तो क्या सच में ये तनाव का बहुत बड़ा कारण है? बल्कि मुझे तो लगता है कि इसके माध्यम से हम अपने जीवन के नए स्वरूप की खोज कर सकते हैं, बहुत सी नई स्वरूप आपको मिलेंगे। अच्छा, मैं इससे भी अपना जीवन चला सकता हूं। अभी तो ये लगता है कि अरे बाप रे, मॉल नहीं होगी तो जिंदगी कैसे चलेगी, थिएटर नहीं खोल रहे हैं तो जिंदगी कैसे चलेगी, रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं तो जिंदगी का सारा मजा खत्म हो गया, इस तरह की बातें हम सोचते हैं। लेकिन अब मजबूरी में ही सही, उसके बिना हमें रहना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हम अपने आप को ही कहीं ना कहीं डिस्कवर ही कर रहे हैं, भले ही मजबूरी में ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने को डिस्कवर कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी से बेवजह जुड़ गई हैं, जिनका वास्तव में कोई अर्थ नहीं है, जो हमारा बहुत सा समय खाते हैं, जो हमारी बहुत सी क्षमताओं को नष्ट करते हैं, यहां तक कि जो हमारे बहुत सारा धन भी बर्बाद करते हैं, उनकी सच्चाइयों को हम जान सकेंगे कि नहीं नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं है। और हो सकता है कि इसके बाद जब हम इस मुकाबले में जीत जाएं, और जीतेंगे ही, अगर हम धैर्य रखेंगे तो डेफिनेटली जीतेंगे, तो हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो, हु नोज, कौन जानता है। तो दोस्तों, मुझे लगा कि मुझे धैर्य के बारे में बात करते हुए इसे धर्म से जोड़कर बताना चाहिए, और ये कोई मैं जोड़ने वाला नहीं हूं, ये तो हमारे मनु साहब कहे गए हैं, और जो दूसरे भी धर्मों के आप स्क्रिप्चर्स पढ़ करके देखिए उसमें धैर्य को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। तो दोस्तों, अभी वक्त है कि जब हम अपने धैर्य का परिचय दें, और अभी वक्त है जबकि हम अपने अंदर इस गुण को पैदा करने का अभ्यास भी करें। तो आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।